प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 27 अप्रैल 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं रूपमाला सूर्यवंशी, आप बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। राहुल खान, आप भरतपुर राजस्थान से हैं। रंजीत रंजन, आप नवादा बिहार से हैं। और संजय कुमार मौर्य, आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो रूपमाला, राहुल, रंजीत और संजय, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे अपने लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। इससे पहले कि मैं इसमें अपनी बात शुरू करूं, मित्रों मुझे एक मेल मिला है रमनदीप सिंह जी का, जो स्थान का नाम उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही नया मुझे लग रहा है, तो उसके उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्टेट का नाम उन्होंने नहीं लिखा है, जगह का नाम लिखा है गिद्धरबहा। ये मैं उसका ज्यादा से ज्यादा सही उच्चारण कर सका हूं जो मेरी समझ में आया है। रमनदीप जी ने लिखा है कि वो लंबे समय तक अस्वस्थ चल रहे थे, फिर बीच में उन्होंने मेरी कुछ किताबें पढ़ी जिसमें मन को जीतो दुनिया जीतो भी किताब थी, और उसको पढ़ने के बाद उन्हें काफी फायदा हुआ और ब्लड प्रेशर की समस्या जो इतने समय से चल रही थी और दवाइयों से हल नहीं हो रही थी वह सुलझ गई, वह हल हो गई और वो स्वस्थ हो गए। मित्रों कल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारी चीजें हम सबके अंदर ही हैं, आपके अंदर भी हैं। जैसे कि जमीन में बीज पहले से ही, बहुत इस तरह के बीज होते हैं जो पहले से ही मौजूद रहते हैं, जरूरत केवल इस बात की होती है कि किस तरीके से जमीन की ऊपरी परतों पर पानी के छींटे डाले जा सके। अगर पानी के छींटे पड़े तो देखेंगे कि किस तरह से वो बीज फरभरा करके जमीन को फाड़ कर अपने गर्दने निकाल कर बाहर आ जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद लंबे होकर लहलहाने लगते हैं। बरसात की जैसे ही पहली बौछार होगी आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जमीन का परिदृश्य बदल गया है। मित्रों मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब आप सुनते हैं कि इस तरह के वाक्य कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि सोच लिया और कर लिया। सच बात यह है कि हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, हमें उनका उपयोग करना पड़ता है। और सारी बातें निर्भर इस बात पर करती हैं कि हम उनका उपयोग कर किस तरीके से रहे हैं। ये मत समझिए कि केवल होना ही पर्याप्त है। जिंदगी में जो भी चीजें हमारे पास हैं उनकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन केवल चीजों का होना ही पर्याप्त नहीं होता है मित्रों, बल्कि उससे ज्यादा इस बात का अर्थ होता है कि हमारे पास जो कुछ भी चीजें हैं हम उनका उपयोग किस तरीके से करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास बहुत थोड़ी सी ही चीजें हों, लेकिन अगर हमने उसका उपयोग सही तरीके से किया तो वो हजारों चीजों के बराबर हमें परिणाम दे देगी। और हो सकता है कि हमारे पास हजारों चीजें हैं लेकिन हम उपयोग उनका सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो एक के बराबर भी परिणाम नहीं देगी, और हो सकता है कि वो उल्टा ही परिणाम हमें दें। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, चाहे हमारे पास वो कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे हमारे पास वो बुद्धि के फॉर्म में हो, चाहे हमारे पास वो फिजिकल एवं शारीरिक श्रम के रूप में हो, किसी भी रूप में, चाहे हमारे पास जमीन का टुकड़ा हो, चाहे हाथ में हमारे कोई उपकरण हो, चाहे हमारा कोई भी टेक्निकल नॉलेज हो, सब कुछ डिपेंड इस बात पर करता है कि आप उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। मित्रों इस बात को और स्पष्ट करने के लिए, एक अलग तरीके से आपके सामने रखने के लिए मैं एक फिर से फिल्म की चर्चा करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि मैं अब जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं शायद जितने भी मेरे आप सभी श्रोता हैं उनमें आधे लोगों ने तो यह फिल्म देखी ही होगी। आधे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फिल्म को सफल होने की जितनी उम्मीद थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन चूंकि ये फिल्म एक ऐसे स्टार की थी जिसे लोग एक बार देखना चाहेंगे, इसलिए मुझे विश्वास है कि फिल्म के असफल होने, असफल उस रूप में नहीं मित्रों, एक माइलस्टोन बन जाता है। अगर शाहरुख खान की फिल्म है तो ये माना ही जाता है कि वो एक सप्ताह में बड़े आराम से 100 करोड़ रुपए को पार कर लेगी, और यदि वो नहीं कर पाई है तो उसे असफल फिल्म मान ली जाएगी। जबकि दूसरी फिल्म अगर एक साल एक सप्ताह में वो 20 करोड़ की भी का भी बिजनेस कर लेती है तो उसे हम सफल फिल्म मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की फिल्म है, और इस दृष्टि से शाहरुख खान की अभी जो फिल्म आई है फैन, इसे एक तरीके से असफल माना गया, हालांकि बावजूद इसके कि दूसरी फिल्मों की तुलना में कई गुना ज्यादा उसने बिजनेस किया है। और मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म देखी ही होगी, अगर नहीं देखी होगी तो शायद भविष्य में आप देखेंगे। दोस्तों आप देखिए कि इस फिल्म की मुख्य समस्या क्या है। इस फिल्म से दो लोग जुड़े हुए हैं, या कह लीजिए कि इस फिल्म की जो समस्या है वह दो लोगों से जुड़ी हुई है। पहली वह जो स्टार है, जो एक्टर है, खुद शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान के निजी जीवन के प्रसंग भी इसमें बहुत से आए हैं, तो शाहरुख खान से जुड़ी हुई समस्या है। और जो दूसरी समस्या है वह दिल्ली के एक लड़के की समस्या है जो अपने को जूनियर शाहरुख खान मानता है। हालांकि फिल्म में वो शाहरुख खान का नामकरण दूसरा हो गया है, लेकिन मैं यहां जानबूझकर जूनियर और सीनियर शाहरुख खान कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से हांट कर सके, ज्यादा अच्छे तरीके से बैठ सके। दूसरी समस्या उससे है जो इस शाहरुख खान का फैन है और जिसने अपना नाम जूनियर शाहरुख खान रख लिया है। मित्रों अब आप देखिए कि केवल थोड़े से समझने की कोशिश कीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप सब इसको थोड़ा सा अपने अपने लेवल पर समझें भी, क्योंकि मैं जो बता दूंगा वो तो मेरी बात होगी, आपकी बात कहां है, आपकी बात तो अपनी तरफ से होनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी ही बात आपकी बात हो, या मैं आपकी बात को ही छीन कर अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन मानकर चलिए कि इसके बावजूद आपकी अपनी कोई बात होगी और मेरी बात में आप अपनी बात जोड़ने की कोशिश कीजिए, वही आपकी अपनी होगी और वही आपके सच पूछिए तो अपनी कैपेसिटी का एक तरह से विस्तार भी होगा, विकास भी होगा। पहला मेरा प्रश्न है कि इस फिल्म की मूल समस्या क्या है। देखिए मूल समस्या आप कह सकते हैं कि फैन बन जाना है या चीजों को नहीं समझ पाना है, और ये सब सही उत्तर है, नो डाउट। लेकिन जब हम मूल शब्द पर जाते हैं कि मूल समस्या क्या है, तो मूल समस्या आप देखेंगे कि सही मायने में समस्या को समझ न पाना ही इसकी मूल समस्या है, कि दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो या उसका फैन हो, कि समस्या की जड़ है कहां। और चूंकि समस्या की जड़ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो सुलझाने के लिए बिल्कुल दो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। आप देखिए कि दोनों अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। मैं फिल्म की समीक्षा नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं फिल्म के माध्यम से मैं जीवन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि इसमें आपको शायद अपने जीवन के लिए कोई रास्ता दिख सके, समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई उपाय सूझ सके, मुझे नहीं मालूम, और कम से कम इतना तो होगा ही कि आप किसी भी चीज को देखने के लिए एक नया नजरिया विकसित कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम इस रूप में चीजों को देखते नहीं हैं। दोनों अपनी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, सच पूछे तो दोनों एक दूसरे की समस्या को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब शाहरुख खान अपने फैन की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो फैन है वो शाहरुख खान की समस्या को नहीं समझ पा रहे, या कह लीजिए कि एक्टर की समस्या को नहीं समझ पा, स्टार कहना चाहिए, एक्टर नहीं, स्टार की समस्या को नहीं समझ पा रहा है। और दोनों समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, दोनों समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, न तो अपनी अपनी समस्याओं को समझ रहे हैं और न ही एक दूसरे की समस्या को समझ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि बिना समझे ही दोनों समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं, और आप देखते हैं कि फिल्म के अंत तक समस्या इनफैक्ट उस तरीके से सुलझ नहीं पाती। क्यों नहीं सुलझ पाती? इसलिए कि वो मूल को समझ ही नहीं पाए। ये बात अलग है कि फिल्म को इस आधार पर मुझे नहीं मालूम कि किस कितना समझा गया होगा, फिल्म तो एक स्टोरी बनाई गई और एक स्टोरी बना करके लिख दी गई और फिल्मा दी गई, लेकिन जो समस्या को समझकर सुलझाने का जो सूत्र उसमें निहित होना चाहिए था वह वहां से गायब है, मुझे जो लगा। अदरवाइज आप देखें कि समस्या बहुत साधारण सी है, जिस पर इसी डेली ऑडियो गाइडेंस के अंतर्गत बहुत लंबी बातचीत की जा चुकी है फ्रेंड्स, और वो समस्या है मूलतः इमोशंस वर्सेस लॉजिक, केवल यही समस्या है। इस समस्या को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो जूनियर शाहरुख खान है वो इमोशनल ग्रिप में है, वो चीजों को लॉजिक तरीके से ले ही नहीं रहा है। वो अपने को ही सच पूछिए तो शाहरुख खान समझने लगा है, वो न तो शाहरुख खान की स्थिति को लॉजिकल एक्सेप्ट कर पा रहा है कि वह क्या है, उसकी अपनी स्थितियां क्या होंगी, उसकी जीवन पद्धति क्या होगी, उससे इस तरह से मिल पाना, उसके उससे 5 मिनट ले पाना सही है या नहीं है, संभव है या नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि जब उन दोनों की मुलाकात होती है एक पुलिस स्टेशन पर, तब शाहरुख खान जवाब देता है कि मैं क्यों दूं, मैं अपनी जिंदगी के 5 सेकंड भी तुमको क्यों दूं। अब कारण क्या है? ये लॉजिकल बात कर रहा है, बात लॉजिकल कर रहा है कि ठीक है मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी पर मेरा अधिकार है, मैं तुमको इसके 5 सेकंड भी क्यों दूं, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है। लॉजिकल तो सही है, लेकिन ये लॉजिकल जो आंसर है वो इमोशन के अगेंस्ट है, वो तो इमोशनल है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार जिसकी जिंदगी 50 साल की हो, उस 50 साल में कितने मिनट होते होंगे, 50 साल में आप 1440 का गुणा कर दीजिए उतने मिनट हो जाएंगे, और 70,000 80,000 मिनट में से मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं है, जबकि मैं इसके लिए इतना मरने को तैयार हूं। आकर के एक एक्टर को सीधे धुन धुना करके चला आता है जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ता है, वो इतना ज्यादा चाह रहा है कि मुझे अपने चाहने वाले को एक फैन के लिए एक स्टार इतना वक्त भी नहीं निकाल पाता, जबकि स्टार बार बार ये कह रहा है, खुलेआम ये कहता है कि मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे फैन हैं, अगर मेरे फैंस ना रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा। बात बिल्कुल सही है, उसकी समस्या इमोशनल है, वो स्टार को लॉजिकली नहीं देख रहा है। और शाहरुख खान की समस्या क्या है? ये लॉजिकल चल रहा है, वो उसको इमोशनली नहीं समझ पा रहा है। आप देख रहे हैं ना, तो न तो वो अपनी समस्या को, जो जूनियर शाहरुख है उसकी समस्या इमोशनल है, वो अपनी समस्या को इमोशनल समझ ही नहीं पा रहा है, वो उसको तार्किकता के आधार पर लेता है कि 5 मिनट भी नहीं निकल रहे। तार्किकता के हिसाब से गणित का फार्मूला निकालिएगा तो आपको सही लगेगा यार कि कैसे नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं जो कुछ भी हूं फैंस की वजह से हूं, तो उसको अपने फैंस को समय देना चाहिए, तार्किकता, लेकिन प्रॉब्लम इमोशनल है। और शाहरुख खान भी इसकी उसका निराकरण तार्किकता के आधार पर करता है, जबकि प्रॉब्लम इमोशनल है। और इसीलिए आप देखिए कि दोनों कहीं भी एक दूसरे के सेम वेवलेंथ पर बात कर ही नहीं पाते हैं। स्टार लॉजिक देता है और जो जूनियर है, जो उसका फैन है, वो इमोशनल तरीके से बात कर रहा है, इमोशनल तरीके से लेता है, तो चीजें कैसे मैच करेंगी, समस्या का निराकरण कैसे होगा? और आप देखते हैं मित्रों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। अब मैं आप लोगों को अपनी तरफ से सोचने के लिए एक होमवर्क देता हूं, मेरे प्रिय श्रोताओं माफ कीजिएगा मुझे इस बात के लिए कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन चलिए थोड़े से मजे के लिए ही होमवर्क करते हैं। और होमवर्क यह है कि जैसे ही शाहरुख खान को पता लगता है कि उसने एक जो दूसरा एक्टर है उसकी पिटाई कर दी है, क्योंकि उसने शाहरुख खान की थोड़ी सी उसने आलोचना कर दी थी और उसको बड़ा तैश आया, फैंस तो अपने स्टार या अपने उसके विरोध में कुछ सुन ही नहीं सकते, जाकर के पिटाई उटाई कर दी, इससे इसकी बड़ी बदनामी हुई। और बदनामी क्या हुई, बाद में वो वीडियो भी जारी हो गया जिसमें वो जबरदस्ती किस तरह से बांध करके उसको मजबूर कर रहा है उस एक्टर को शाहरुख खान के फेवर में स्टेटमेंट दिलाने के लिए, वो भी वीडियो वायरल हो गया और इससे स्टार की बहुत जबरदस्त बदनामी हुई। और इसके बाद स्टार ने एक स्टेप उठाया, आपको मालूम है स्टेप ये उठाया कि पुलिस को फोन किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, राइट? दो सिचुएशन मैं आपको देता हूं मित्रों, अब आप अपनी तरफ से कहानी लिखिए। पहली सिचुएशन तो यह है कि जैसे ही उसका फैंस का फोन आता है और शाहरुख खान ये कहता है कि ठीक है तुम वहीं रुको, तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए भेजता हूं, ये कहता है, कहने के बाद फोन रख देता है। तो पहली स्टेज ये है कि उस समय शाहरुख खान को और कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए थे, आप अपनी तरफ से सोचिए। जो फिल्म में स्टेप लिया गया है आपको मालूम है कि वो पुलिस को फोन करता है और करते हैं और पुलिस उनको उसको पकड़ करके उसकी पिटाई करती है, ये स्टेप तो फिल्म में है। आप सोचिए कि अगर शाहरुख खान की जगह आप होते तो आप क्या करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, फिर जब उसकी पिटाई उटाई हो जाती है तब शाहरुख खान थाने में पहुंचता है और थाने में फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है, राइट। उस बातचीत में अगर आप होते, फैंस की जगह नहीं, मैं शाहरुख खान की जगह, उसमें उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज होगी, बहुत मजेदार है, लेकिन बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज डू इट, स्पेयर एटलीस्ट 15 मिनट्स, आप अपने जिंदगी के सिर्फ 15 मिनट एक दिन के निकाल लीजिए और इस काम को करिए कि आप क्या करते, और इस रूप में निकालिए ताकि ये समस्या ही पैदा नहीं होती, या यहीं से तो समस्या की शुरुआत हुई है। तो आप इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपका स्टेप क्या होता, तब आप सही में जीवन को लर्न कर पाएंगे। और मित्रों, इसे कीजिए। और अब इसके साथ ही मैं आज लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को यहीं खत्म करता हूं और अब आता हूं AIR न्यूज पर। दोस्तों, सच पूछे तो आज भी AIR न्यूज में ऐसी कोई खबर नहीं है जिसे लेकर मैं आपसे थोड़े से लंबे समय तक एक इशू पर बातचीत कर सकूं। इशारे के तौर पर मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा जो हो सकता है कि प्री में थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सके। पहली बात तो ये कि रेलवे ने एक कोष बनाया है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाने की घोषणा की है, अभी बना नहीं है। रेलवे मिनिस्ट्री ने फाइनेंस को अपना प्रपोजल भेजा है। देखिए, ये प्रक्रिया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आपके समझ में आनी चाहिए कि जहां भी पैसे की बात होगी, चाहे वो एक पैसा ही क्यों ना हो, हालांकि अब तो एक पैसे की वक्त नहीं रह गई, मुझे कहना चाहिए कि एक रुपया खर्च करने की ही बात क्यों ना हो, आप प्रक्रिया ये है सरकार में कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, राइट। तो इन्होंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस प्रपोजल के, ये प्रपोजल बना करके भेजा है और सरकार ने कहा है कि वो 1,00,000 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष स्थापित करेगी। अब देखिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर क्या एक्शन लेती है, लेकिन सामान्यतया ये मान करके चलिए कि इस तरह के प्रपोजल भेजने से पहले, चूंकि एक मिनिस्टर का प्रपोजल है, तो कहीं ना कहीं आपस में बातचीत हो चुकी होती है, चाहे किसी भी लेवल पर हो, और फिर प्रपोजल भेजा जाता है। अब देखते हैं कि जब ये मंजूरी आ जाएगी और कोष स्थापित होगा तब हमें इसके बारे में डिटेल से जानने को मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी नई खबर है और थोड़ी कुछ सीमा तक महत्वपूर्ण भी है। दूसरा, मित्रों, आपने देखा कि कल से, आज अखबारों में भी आपने काफी देखा होगा, कल चैनल्स वगैरह पर भी काफी था, एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया था, 10-12 हेलीकॉप्टर खरीदे, अगास्ता हेलीकॉप्टर उसका नाम है, जो इटली से खरीदे जाने थे, खासकर ये VVIP की सुरक्षा के लिए थे। उसी समय फिर इसमें कुछ मामला हुआ कि इसमें कुछ डील हो रही है, कुछ करप्शन का मामला है, तो फिर इसको स्थगित कर दिया गया और इटली में वहां के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे भी चले, जिसमें वहां के न्यायालय ने कुछ वहां के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है कि उन्होंने भारत में इसके लिए रिश्वत दी है। और वहां फिर ये कोर्ट ने कहा कि भारत के कुछ अधिकारियों को इस मामले में रिश्वत भी दी गई, हालांकि बाद में ठीक है कि ये डील कैंसिल कर दी गई थी। तो अब इसको लेकर के भारत में एक इशू खड़ा हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस पर अब आरोप लगा रही है कि वहां करप्शन था, और नाम बताएं कि किस किस ने ये पैसा लिया है। मित्रों, इसमें आपने एक चीज सुना, न्यूज में ध्यान दिया होगा कि अधिकारियों को रिश्वत दी गई, सीधे सीधे उसमें अधिकारियों का नाम आ रहा है, उसमें हो सकता है डिफेंस के हो या सिविलियंस हो, वी डोंट नो, नाम आने पर पता लगेगा। तो ये एक जो एक केवल एक उदाहरण है, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है, या कह लीजिए कि सेकेंड पेपर में, जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर में भ्रष्टाचार इन सब के इश्यूज पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एक केवल ये उदाहरण है जिसका इस्तेमाल आप एथिक्स, मॉरलिटी इन सब के आंसर देते समय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्लीज, जहां तक जनरल स्टडीज के पेपर का सवाल है, जब भी उसमें कोई एग्जाम्पल देने की बात आए तो आप हमेशा नए से नए एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो इससे पहले भी 100 बार लगाए जा चुके हैं और आपको बहुत से उनके नाम याद होंगे, लेकिन यदि आप एग्जाम्पल के रूप में अपने आंसर में देना चाह रहे हैं, तो बट नेचुरल के अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया, अभी उत्तराखंड में लगाया गया, तो इनके एग्जाम्पल दें, तब आप सही मायने में, विषय है करेंट अफेयर्स और करेंट अफेयर्स डिमांड करता है कि आप करेंट एग्जाम्पल दें, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमेशा आपको अपने आप को ऐसी घटनाओं के प्रति अपडेट रखना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, कल मैंने आपको थोड़ा सा इशारा किया था कि जो हार्ट ऑफ एशिया, जो खासकर अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, वहां के मामलों को लेकर के दिल्ली में बैठक हो रही है। 12 देशों के लोग, आप के नेता और अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं वहां की समस्या पर। इस पर आपकी बाकायदे नजर होनी चाहिए। देखते हैं अभी क्या बातचीत होगी, लेकिन जो भी इसके बारे में खबरें आपको अखबारों में पढ़ने को मिले, प्लीज आप उन्हें पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अफगानिस्तान की दृष्टि से, नहीं भारत की दृष्टि से, क्योंकि अफगानिस्तान की घटना भारत को प्रभावित करती ही करती है। और 2013 में सीधे सीधे सवाल भी अफगानिस्तानी ऊपर पूछा गया था, क्योंकि उसी समय अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला लेगी। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुला लेगी, तो फिर जो भारत की सुरक्षा को जो चुनौती होगी, उसके लिए भारत क्या उपाय कर रहा है। तो अफगानिस्तान, आप देखते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत की लगभग लगभग सीमा पर है, सीधे तो नहीं लेकिन बहुत ही नजदीक है। तो और आतंकवाद से भारत वैसे ही परेशान है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बहुत से आतंकवादियों के अड्डे हैं, प्रशिक्षण कैंप हैं, वहां प्रशिक्षित किया जाता है। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अफगानिस्तान का मामला भारत के लिए। तो उस लिहाज से आपको इस इशू पर, इस मीटिंग में जो निष्कर्ष निकलेंगे, जो बातचीत होगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज के बारे में तो बस इतना ही मुझे आप लोगों से शेयर करना है। हाँ, जहां तक न्यूज पेपर का सवाल है, तो न्यूज पेपर्स में आज कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। मित्रों, हम लोगों की कोशिश अब है कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, खासकर जो स्पीकिंग वाला हिस्सा है, उसमें तो बहुत ज्यादा कोई ऐसे बदलाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें इसके फॉर्मेट में ली गई हैं, सारी के सारे महत्वपूर्ण हैं। कहने का तरीका वगैरह थोड़ा सा बदला जा सकता है, कुछ चीजें और नई चीजें शामिल की जा सकती हैं, जिसके लिए लगातार आप लोगों से सजेशंस मिलते रहते हैं और मैं उन्हें शामिल भी करने की कोशिश करूंगा। हाँ, उसका जो रिटेन फॉर्मेट में है, जो fais.com पे जाने के बाद आपको नॉलेज सेंटर्स में जो चीजें मिलती हैं, उसमें हम लोग जरूर कुछ और करने की सोच रहे हैं। एक चीज जो आपको पढ़ने को मिलेगी मित्रों, अब हम लोगों ने शुरू किया है कि कुछ और भी आपको रीडिंग मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी आपको एक हो सकता है कि आज ये मिले, देखते हैं कैसे संभव होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कंट्री को एड्रेस किया है, खासकर पंचायती राज्य को लेकर के, पंचायती राज्य सम्मेलन को लेकर के जमशेदपुर में, उसकी जो स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। इंपॉर्टेंट स्पीच इसलिए है, इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, पहली तो बात है कि देश के सीईओ कंट्री को संबोधित कर रहे हैं, पहली बात, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, राइट। दूसरी बात कि ये पंचायती राज्य से संबंधित है, मतलब डेमोक्रेसी का बिल्कुल ग्रास रूट लेवल। आप उठा करके देखिए, पंचायती राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और फिर जब पंचायती राज्य की बात होगी, तो डेफिनेटली गांव की बात होगी, क्योंकि गांव के बिना पंचायती राज्य एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब गांव की बात करेंगे प्रधानमंत्री, तो स्वाभाविक रूप से फिर वो सारी चीजों को बड़े डिटेल तौर पर लेंगे। हमारे पहले के गांव क्या थे, अब के गांव क्या हो रहे हैं, पंचायती व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए, सरकार पंचायती व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कर रही है। और जब वे प्रधानमंत्री जी ये सब बातें करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं वे बहुत अच्छे आंकड़ों का इस्तेमाल भी करेंगे, और वो जो आंकड़े देंगे उसे आप सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय आंकड़े मानकर चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उसी में फिर आप देखेंगे कि बहुत से सजेशंस भी प्रधानमंत्री जी ने दिए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रधानमंत्री जी का एड्रेस है, ये एक बड़ा बहुउद्देशीय किस्म का आपको एड्रेस दिखाई देगा, जिसमें आपको भारत के पूरे गांव की झलक मिलेगी, गांव की जरूरतों से लेकर के और उनके वर्तमान परिदृश्य तक की झलक मिलेगी। तो मित्रों, ये स्पीच आपको प्रोवाइड की जा रही है, और मैं चाहूंगा कि इस स्पीच को आप बड़े ध्यान से पढ़ें और इसमें से अपने लिए जरूरी जरूरी चीजें निकाल लें। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल जरा सा एक बौद्धिक किस्म का उपक्रम होता है ना, उसमें लिखना, उसकी भाषा उस तरीके की होगी, एक्सप्रेशन डिफरेंट तरीके के होंगे, आंकड़े और मतलब एक बहुत उसमें कसाव होगा, कसावट होगी, तो वो दिमाग को थोड़ा सा स्वीकार करने में, दिमाग के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जब आप किसी उसी चीज को स्पीच के फॉर्म में सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें आपको एक अलग तरीके का मजा आता है, क्योंकि उसमें झोल तो नहीं कहना चाहिए, उसमें एक लचीलापन होता है, तो दिमाग उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। वो बातचीत करने की शैली होती है, सच पूछे तो ठीक उसी तरह से जैसे कि मेरा ये डेली ऑडियो में अगर मैं किसी इशू पर बात करता हूं तो बड़े अलग तरीके से होता है, लेकिन उसी इशू पर अगर मैं आपको आर्टिकल में चीजें प्रोवाइड करूं तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगा। तो जो स्पीच की जो भाषा होती है, बस उसमें सतर्कता आपको ये रखनी होती है कि इन्फ्लेशन ना हो, मतलब आपका दिमाग फालतू की चीजों को ना एक्सेप्ट करे, जो जरूरी चीजें हैं उनको छांटने की क्षमता रखता हो, नहीं तो पता लगा कि जो चीज इंटरेस्टिंग लग रही है उसको तो दिमाग एक्सेप्ट कर ले रहा है और जो वास्तविक चीज है वो छूट जा रही है। तो इस बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज स्पीचेज, इस तरह की स्पीचेज हमको खासकर हमारी कल्पना को बढ़ाने में, नए नए आइडिया देने में, मौलिकता तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। तो मित्रों, इस लिहाज से आप इस स्पीच को जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और सिर्फ एक बार नहीं, कई कई बार पढ़िएगा, तो आप देखेंगे मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, पंचायतों की समस्या, गांव के विकास की समस्या, गांव के लिए दी जाने वाली योजनाओं के लागू किए जाने की समस्या, इस तरह की ढेर सारी चीजें आपको इस स्पीच में देखने को मिल जाएंगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से आपका अध्ययन होगा। मित्रों, इसके बाद आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जो जनसत्ता का एडिटोरियल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2 साल से एक समान सिविल संहिता की बात हो रही है, है ना, उसको लेकर के पिछले साल क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा गया है कि जो डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स हैं और जो समान सिविल संहिता है वो किस प्रकार एक दूसरे के प्रति एक विरोध सा पैदा कर रहे हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हो ये रहा है कि जब समान सिविल संहिता की बात आती है तो वो जाकर अटक जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते, जैसे महिलाओं के अधिकारों की बात को लेकर, हालांकि ये बात अलग है कि महिलाओं के अधिकारों की बात को लेकर के बहुत से भारतीय में भी मेल नहीं खा रहे, जैसे अभी मंदिरों में पूजा अर्चना करने के अधिकार के मामले को आप देख रहे हैं कि औरतें नहीं जा सकती, उस पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने को अपनी रूलिंग देनी पड़ी है। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें महिलाओं को एक तरह से द्वितीय नागरिक की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे एक तरह से समानता के अधिकार से मेल नहीं खाता। उसी बारे में एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, कई मुस्लिम संगठनों की एक प्रतिनिधि संस्था है जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, ये नाम आपको रट जाना चाहिए, भले आपको रटने में दिक्कत हो, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत, उसने अपील की है, और ये जो अपील है ये बहुत महत्वपूर्ण अपील है, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए कि मुशावरत ने अपील की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए पहल किया जाए। एक बहुत बड़ी बात है कि अब आपको सुधार के लिए थोड़ी सी पहल होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि 3 बार अगर तलाक कह दिया गया तो फिर वो तलाक हो जाएगा, मुस्लिमों में अभी भी बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, और तलाक भी जो है ना एक तरफा भी हो सकता है कि अगर पुरुष ने 3 बार तलाक कह दिया तो वो तलाक मान लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप मामले चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ चीजों को लेकर के बातें हो रही हैं, इसको लेकर के बहुत अच्छा एडिटोरियल इसमें लिखा गया है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। पहला तो ये दिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस बात ने एक बहुत कमजोर बना दिया है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये बेसिकली इस्लाम के सुराओं पर आधारित है, और अगर आप ये बात कहते हैं कि इस्लाम के सुराओं पर आधारित है तो सीधी सी बात है कि आपका फिर इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। जैसे कोई चीज आप कहते हैं कि साहब ये वेदों पर आधारित है या ये भगवान का ही वचन है, फिर उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं के बराबर हो जाती है। जबकि सही स्थिति यह है कि सुराएं तो अरबी भाषा में लिखी गई है, जो कुरान की जो ओरिजिनल भाषा है अरबी में ही, अरबी या फारसी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं। तो सुराओं के फिर जब अनुवाद हुए हैं तो कई कई अनुवाद हैं, एक ही सुरा है उसके कई भाषाओं में अलग अलग अनुवाद हैं, और फिर उसकी कई कई व्याख्याएं हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है वो पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है, क्योंकि सुरा तो एक ही है, तो फिर वो अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों है? क्योंकि उसकी व्याख्याएं अलग अलग है। तो पहला तो ये पॉइंट बनता है। दूसरा ये है कि एक असगर अली इंजीनियर बहुत ही बौद्धिक किस्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बताया कि भारत में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो चल रहा है बेसिकली उसका आधार अंग्रेजी राज के दौरान अंग्रेज जजों ने जो अपने फैसले दिए मुस्लिमों के मामले को सुनते हुए उन पर आधारित है। यानी कि यह असल में एंग्लो मोहम्मडन लॉ है, मुस्लिम लॉ नहीं है। इसमें अंग्रेजों के फैसलों का भी मिश्रण है, तो यह प्योर सुराओं पर आधारित भी नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा होता तो अलग अलग देशों में अलग अलग पर्सनल लॉ नहीं होता। तो मित्रों, और एक बात और भी है कि जो इस्लाम है, आप देखेंगे कि इस्लाम केवल एक ही एरिया में नहीं है। एक तो होता है कि एक ही कॉन्टिनेंट में है तो वहां एक ही ज्योग्राफिकल सिचुएशन है। मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैच के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से ज्योग्राफिकल सिचुएशन का कैसे कल्चर से रिलेशन होता है उसको समझ सकेंगे। आप अफ्रीका में चले जाइए तो मुस्लिम है वहां, यूरोप में चले जाइए तो वहां है, एशिया में तो है ही, मध्य एशिया में। तो इस तरीके से जो अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में ये जो विकसित हुआ है तो पर्ट नेचुरल है कि उसके हिसाब से ढलने में उस तरह की मांग भी होगी। तो ये एक बहुत अच्छे बहस की शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इस पर भी आप लोगों को थोड़ा तैयारी थोड़ी अपनी थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए और इस तैयारी में ये जो एडिटोरियल कमेंट है ये आपकी मदद करेगा। मित्रों, एक मैं आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं गुरुचरण दास जी का, जो खासकर जो रियल एस्टेट बिल आया था उसको लेकर के उन्होंने लिखा है। रियल एस्टेट बिल उस समय मैंने बताया था कि ये सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे ज्यादा रोजगार देने की जो क्षमता है खासकर लोअर लेवल को, लोअर तबके को, तो वो इसी क्षेत्र में है, आवास के क्षेत्र में है। और एक जो आवास का जो क्षेत्र होता है, रियल एस्टेट का जो क्षेत्र होता है, अगर ये विकसित होता है तो इससे जुड़ी चुकी बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो सारे क्षेत्र विकसित होते हैं। तो इसमें उन्होंने लिखा है इस आर्टिकल में कि उनमें क्या क्या सुधार और किए जाने चाहिए, जो बिल आया है उस पर किन किन चीजों की और ज्यादा जरूरत थी। तो आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये आर्टिकल आपकी बहुत मदद करेगा। हिंदी में है, इसे आप सीधे सीधे देख लेंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इससे आपकी दिक्कतें थोड़ी सी हो सकता है कि कम हो जाए। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं दो तीन और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि पंचायती राज पर एक पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी का स्पीच ही होगा, तो उसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में ट्रू पंचायती राज पर एक आर्टिकल है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है खासकर पॉवर्टी एस्टिमेट को लेकर के, गरीबी रेखा को लेकर के जो भारत में लगातार एक बहस छिड़ी हुई है उसको लेकर के एक अच्छा आर्टिकल योगेंद्र के अलग जी ने लिखा है। और शायद इनका नाम आप जानते होंगे कि अलग जी के ही अध्यक्षता में सिविल सर्विस के रिकमेंडेशन देने के लिए भी एक कमेटी बनी थी जिसे अलग कमेटी कहा जाता है। तो एक बहुत अच्छा लेख वो भी है। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स से इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। एक मुझे मेल मिला है स्नेहा सीस का, जो फोर्थ बैच के स्टूडेंट हैं। उन्होंने लिखा है कि अभी उनको उन लोगों को फोर्थ बैच को जो प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेशल ऑडियो के रूप में, वो ऐसे राइटिंग पर है। और इस पर मुझे आप सबके फोर्थ बैच के बहुत मेल मिले हैं और सबने ऐसे राइटिंग वाले स्पेशल ऑडियो को सुनने के बाद प्रतिक्रिया दी है कि इससे ऐसे लिखने में उन्हें बहुत मदद मिली है, काफी कैपेसिटी डेवलप हुई है। उन्होंने कहा है कि जीएस मेन्स के लिए भी इस तरह के स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए जाएं कि क्वेश्चंस को कैसे समझें, कैसे देखें, कैसे लिखें। तो स्नेहाशीष, मैं आपके माध्यम से फोर्थ बैच के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि उन्हें इस जनरल स्टडीज का जो मेंस के जो पेपर्स होते हैं उसमें आंसर राइटिंग के बारे में स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत विस्तार से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मित्रों, सभी मेल लिखने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी में से कुछ नाम है, हिमांशु गुप्ता जो भरतपुर राजस्थान से हैं, भरत कुमार भिवानी से हैं, गौरव कुमार सांवर मलमीणा जो टोंक राजस्थान से हैं, पल्लवी सिंह योगेश साहू पंकज मिश्रा जो दिल्ली से हैं, मनीष बैसोया जो नोएडा से हैं और अंकित राज, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।